أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. درود بجي محمد وعلى محمد. خداوند عالم کو شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی عبادت و اطاعت کے اندر زندگی بسر کریں. اس کی خدا سے دعا یہ کہ ہمیں حقیقی معنوں میں رضا داروں میں ہمارا شمار فرما، اور اس کے ذریعے سے وہ اہداف جو ہمیں حاصل کرنے ہیں تقویٰ کے، بالخصوص جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. درس کے پہلے حصے میں فقہی مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. کل جو سوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، سوال یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی نیت کا وقت کب تک ہے؟ ٹل وین وی آر الاؤڈ ٹو ڈو دا انٹینشن فار دا فاسٹ آن دا ڈے آف ماہ مبارک رمضان. If anybody want to answer, نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. میں جواب دیتا ہوں ایسے ہی، جو ہے آج وقت بھی کم ہے، میں زیادہ دیر نہیں کرتا ہوں اس کو. بیسیکلی سوال یہ تھا کہ نارملی آپ سب کو معلوم ہے کہ نارملی ہم جو ہے وہ نماز صبح سے پہلے روزے کی نیت کر لیتے ہیں. پرابلم اس وقت آتا ہے کہ جب سپوز کریں آپ کی آنکھ نہیں کھلی، سحری کے موقع پر آپ نہیں اٹھ سکے، رات کو تھکے ہوئے تھے، آنکھ نہیں کھلی آپ کی، اور آپ جو ہے دیر سے جو ہے صبح کے لیے بیدار ہوتے ہیں، نماز صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، آیا اس وقت میں روزے کی نیت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ بیسک فتویٰ جو تقریباً تمام مراجین کا ہے، فتویٰ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر روزے کی نیت، آپ کو نماز صبح سے پہلے جو ہے وہ روزے کی نیت کر لینی چاہیے. البتہ میں تھوڑا سا اس کو روشن کروں، اس پہ ایکسپلین کروں کہ نیت سے کیا مراد ہے. بس نماز صبح سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ اس دن کا روزہ جو نہیں رکھ سکتے، پھر قضا اور کفارہ کی بحث جو ہے الگ سے اپنی جگہ آئے گی. لیکن اگر سپوز کریں ان انٹینشنلی آپ جو ہے وہ روزے کی نیت نہیں کر سکے، سپوز کریں آپ کی جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی، آپ اٹھ نہیں سکے، ایسا نہیں تھا کہ جان بوجھ کے آپ نے کام نہیں کیا، انٹینشنلی کام نہیں کیا، بلکہ ڈیلے نہیں کیا اپنی نیت کو، بلکہ ان انٹینشنلی جو ہے وہ آپ سے یہ کام ہو گیا. یا سپوز کریں آپ جو ہے وہ صبح کے وقت مسافر تھے، آپ جو ٹریولنگ میں تھے، آپ صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے داخل ہوتے ہیں، اپنے شہر کے اندر جو داخل ہوتے ہیں، جس موقع پر آپ ٹریولنگ میں تھے آپ نیت نہیں کر سکتے تھے، اب آپ شہر کے اندر آ کے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آیا میں نیت کر سکتا نہیں کر سکتا؟ ان تمام صورتحال میں جب آپ نے انٹینشنلی ڈیلے نہیں کیا اور نماز ظہر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نیت کر سکتے ہیں، بشرط اس شرط کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اف یو ڈی ناٹ ڈو اینی تھنگ وچ از ناٹ الاؤڈ ڈیورنگ دا فاسٹنگ. وہ نو چیزیں جس سے آپ کو مبتلات روزہ ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، اگر آپ نے اس میں سے کوئی انجام نہیں دیا، اس وقت آپ نیت کر سکتے ہیں اور آپ کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. بس بیسک مسئلہ یہ کہ آپ کو نماز روزے کی نیت جو ہے وہ نماز سب سے پہلے انجام دے دینی ہے، اور اگر آپ نیت انجام نہیں دے پاتے کسی پرابلم کی وجہ سے، تو آپ جو ہے ظہر کے وقت تک اس نیت کو انجام دے دینا ہوگا آپ کو. ہاں، اب سوال جو میں آپ سے کہا تھا کہ سوال یہ پیدا تھا کہ نیت سے کیا مراد ہے، آیا مجھے زبان سے کہنا ضروری ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کے پانچویں دن کا، سنت قربۃ للہ، یہ سب کہنا ضروری ہے؟ نہیں، نیت یہ نہیں ہے. نیت کا مطلب ہے، نیت کا تعلق آپ کے قلب سے، نیت از انٹینشن، فقط آپ کے دل میں یہ انٹینشن ہے کہ آئی ایم فاسٹنگ ٹوڈے، آئی ڈو ناٹ ڈو دیز 10-9 تھنگ وچ آر ناٹ الاؤڈ ڈیورنگ دا فاسٹنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربۃ للہ. جس یہ آپ کے ذہن میں فقط یہ خیال ہے. آپ کو میں پوچھوں صبح کہ آپ اٹھے کیوں ہیں، تو آپ کہیں گے میں روزے کے لیے اٹھا ہوں. کافی ہے آپ کے لیے. آپ ماہ مبارک جب شروع ہوا تھا تب بھی آپ نے رات میں جو ہے پہلی رات کو جب چاند के बारे में आपने ऐलान सुना था, तो आपने कहा था इंशाल्लाह अगर खुदावंद आने तौफीक दे पूरे महीना रोज़ा रखूँगा, ये आपकी नीयत है, ये काफ़ी है, इसके अलावा आपको कोई अलग से नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात मैं कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई शख्स सपोज़ करें उसकी मैं उसने इरादा किया था कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, खुदा ना खास्ता जो है वो उसने ये सोच लिया था कि मैं खुदा की मुखालफत का मासिस का इरादा कर लिया, उसने कहा था मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, सुबह 7 या 8 भी उसके ख्याल आता है कि क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, क्यों आया मैं नहीं रोज़ दोबारा क्यों ना खुदा आलम की तात में आ जाऊँ और रोज़ा रखूँ, एक बार तौबा करता है खुदा रोज़ा रखना चाहता है। अब ये रोज़ा रख सकता है नहीं रख सकता, अगर उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो रोज़े को बातिल कर देता है और जोहर के वक्त तक जो है वो अगर इस काम को अंजाम दे तो ये काम अंजाम दे सकता है, उसको रोज़े की कज़ा नहीं करनी, इस रोज़ा जो है उसका काउंट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है यूटिलाइज हो गई, या मसलन माह रमज़ान का पहला दिन है जब इंसान को नहीं मालूम कि चांद हो गया रात को, उस मौके पर आप सुबह उठते हैं सुबह 9 बजे और आपको पता चलता है कि आज पहली रमज़ान हो चुकी है, उस मौके पर आप नियत कर सकते हैं जोहर तक, ठीक है, तो वहाँ पर उन मौके पर आपको ज़्यादा काम आएगा। वरना डेफिनेटली जो लोग हकीकी मानों में खुदा के बंदे हैं वो माह रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं खुदा हमें तौफीक दे के हम रोज़ा रखें, तो यकीनन ये फ़क्त उनके जहन में इरादा होना ही जो है वो काफ़ी है और ये उनकी नीयत जो है वो काउंट होगी, उसको अलग से ज़बान से नीयत को अदा करने का ज़रूर नहीं है। एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल के लिए सवाल ये कि ख़ास तौर पे हमारी वो बहनें और बेटियां कि जो इस माह मुबारक रमज़ान में बुलूगत के उस मंजिल पर पहुँचती है, खुदा अंदर उन्हें फजीलत अता फरमाता है, ये सिफ़त अता फरमाता है कि वो खुदा की बारगाह में कुर्बत की नीयत के साथ जो रोज़े रख सकें, वजूब की नीयत के साथ रोज़े रख सकें। बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जो कमज़ोर होती हैं, उनके माँ बाप भी समझते हैं कि शायद रोज़ा नहीं रख सकती, उनके रोज़े के लिए क्या है काम है। इंशाल्लाह आप सबको मालूम है कि लड़कियाँ जो है 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं, 10 साल इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, अगर वो बालिग होती है, आप देखते हैं कि कैनेडा के अंदर मतलब 18 आवर्स का रोज़ा है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि ही कैन फास्ट शी कैन फास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन दैट डे, अब क्या हुक्म है इसके लिए, या रोज़ा रखना होगा नहीं रखना होगा, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसके हवाले से इंशाल्लाह जो है हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक बार दुरूद पेश है मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तबारुकन दुआ के जुमले भी पढ़ता चलूँ, इंशाल्लाह फिर कुरान की आयत के हवाले से डिस्कस करेंगे। सूरह दुआए इफ्तिताह के हवाले से हम चंद जुमलात की तिलावत कर रहे थे, कल इमाम ज़माना जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दिन की मुनासिबत से हमने उस जुमले को जो दुआ इफ्तिताह के तकरीबन एंड के ऊपर था उस जुमले की तलावत की, मैं दोबारा से उन इब्तदाई जुमलों की तरफ आता हूँ, उसकी तलावत करते हैं हम लोग, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर खुदावंद ने भी फरमाता है उन दुआओं की इब्तदा करने के बाद। अज़ीज़ाने गिरामी, जब भी आप इन दुआओं का मुताला करें, मैंने कहा कि ये मारिफ़ इलाही है खुदावंद आलम के अहले बैत अलैहिस्सलाम पे, हम पे नज़र करम है कि इन्होंने ये तालीमात दी दुआ की सूरत में हमें। ये दुआ पढ़ने के साथ साथ जहाँ मतलब पर गौर करें, एक और तरीका, एक और चीज़ भी सीखिए, सीखते जाइए इस दुआ को पढ़ने के साथ साथ, और वो ये कि खुदावंद आलम से कैसे हम कलाम हुआ जाता है, खुदावंद आलम से कैसे बात की जाती है, वो बात करने का ढंग, वो एटिकेट्स क्या हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने खालिक और मालिक से बातचीत की जा सकती है। ठीक है, मेरे मौला और आका ने जब इस दुआ को शुरू किया, इब्तिदा में क्या काम अंजाम दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततु सना बिहम्दिक, बस दुआ का पहला स्टेप जो मुझे और आपको उठाना है वो हमद खुदा है। कोशिश करें कि जब भी खुदा की बारगाह में हाथों को फैलाएं, पहले खुदा की हमद सना करें, खुदा की तारीफ़ करें, खुदा की जो है वो नेमतें जो खुदा ने अता की उसको याद करें, ये दूसरा मरहला है। पहले हमद है, इसके बाद दूसरा मरहला है कि जो खुदा ने आपको नेमतें दी उसको याद करें। बाज़ औक़ात इंसान फ़कत अपनी मुश्किल को, अपने ऊपर जो आने वाली परेशानियों को जो याद करता है, खुदा के बारे में शिकवा कर रहा होता है। अज़ीज़ाने किराम, आइए तस्वीर के दूसरे रुख को देखना शुरू करें, उन नेमतों को देखना शुरू करें जो खुदा ने हम पर नाज़िल की है। इंसान अगर गिनने बैठे तो तसव्वुर से बाहर है कि जो खुदा ने उसको जो है नेमतें अता की हैं। हम मैं और आप शायद सिर्फ मादी नेमतों को देखते हैं, मादी नेमतों के अलावा मानवीय नेमतें, स्पिरिचुअल नेमतें, माँ बाप की नेमतें, एक एक नेमत अगर इंसान गिनना शुरू करे तो कई कई रातें फ़कत बसर हो जाए, फ़कत इंसान जो है वो गिनना गिन सके। शुक्र अदा करना तो बहुत बात की बात है, फ़कत नेमतों को गिनने में जो है इंसान की ज़िंदगी बसर हो जाए। हम अहले बैत के चाहने वालों के लिए तो शायद खुद विलायत अहले बैत इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि हम पूरी ज़िंदगी जो है सजदा शुक्र में खुदा के अंजाम दें, खुदा ने हमें अहले बैत की मोहब्बत अता की, खुदा की बहुत बड़ी नेमत है जो खुदा ने हमें अता की है। वाकई तो इंसान को उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की हमें मोहब्बत अता की। हमारे एक उस्ताद बात करते थे कि मुझे उनका जुमला बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो खुदा की नेमतें जो तुम्हें अता की गई उसको गिनने के बजाय एक रात जो है वो इस तरह से गुजारना कि खुदा ने जो चीज़ें तुम्हें अता, तुम समझते हो कि अता नहीं कि उसको काउंट करना शुरू करो, और दर हकीकत वो नेमत है तुम्हारे लिए। यानी बात चीज़ें ऐसी होती है कि मैं समझता हूँ कि क्यों खुदा ने मसलन फ़लाँ की तरह मुझे भी वो चीज़ अता नहीं की, ठीक है, लेकिन ये खुद जो है एक नेमत होती है कि जो हम और आप ये समझते हैं कि ये जहमत है, मुश्किल है, ये खुदा की एक नेमत है। अगर खुदा ना खासा नेमत अता हो, जो हम ये समझते हैं कि नेमत है, अता हो जाती तो शायद बहुत सारी और नेमतों से मैं और आप महरूम हो जाते। एक मशहूर वाक्य शायद आप सबने सुना होगा, एक शख्स को जब बेटी अता, खुदावंद आलम बेटी देता है, अरब के माहौल में ये था कि जब बेटी अता होती है तो बहुत ही नाराज़ होता है, ये क्या मसलन जो है खुदावंद आलम ने जो है बेटी अता दी। खुदावंद आलम की रहमत है, लेकिन इंसान बाज़ का समझता है जहमत है हमारे लिए। बेटी होती है, लोग मुबारकबाद देने आते, घर का दरवाज़ा बंद कर देता है, कहता है कि भाई मुझे जो है किसी से मुलाकात नहीं करनी, मैं जो है वो बेटी मिली है मुझे और मैं जो है बिल्कुल नाराज़ हूँ क्यों खुदावंद आलम ने मुझे बेटी दी। बहलोल को खबर मिलती है, बहलोल को सुनता है कि इस शख्स खुदा ने एक नेमत अता की, लेकिन जो है नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, समझ नहीं रहा कि किस कदर बड़ी अजीम नेमत है। कहता है कि मुझे उसके पास ले जाए, बहलोल जाता है उसके पास और उस शख्स से कहता है कि क्या हुआ। कहा कि बस खुदावंद आलम ने मेरा ही घर देखा है, बेटियाँ बेटियाँ अता कर रहे हैं, मैं जो है वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे बेटा चाहिए था। तो बहलोल कहता है तुम खुदा का शुक्र अदा करो। वो कहता गुस्से में आकर कहता है कि तुम समझ नहीं आ रहा कि मैं नाराज़ हूँ इस वक्त, मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ, नेमत नहीं, मुझे जहमत हुई और मैं इस बात पर शुक्र अदा करूँ। तो बहलोल कहता है कि खुदावंद आलम अगर तुझे मुझ जैसा जो दीवाना बेटा दे देता तो फिर क्या तू खुदा का शुक्र अदा करता, ये अच्छी खूबसूरत बेटी दी है तुझे जो उस पर खुदा का शुक्र अदा करना। तब उसको समझ में आता है वाकई ऐसा ही है कि अगर तुझे जैसा बेटा मुझे मिल जाता, उससे बेटा अच्छा है खुदा ने जो मुझे दीवाना बेटा नहीं दिया बल्कि एक नेक बेटी अता कर दी। उसके बाद अपना घर का दरवाज़ा खोलता है, सब लोगों को दावत देता है वलीमे के लिए कि आओ मेरे घर पर मुझे जो है मुबारकबाद दो। सिर्फ कहने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात इंसान को जब नेमत मिलती है उसकी कद्र इंसान जो है वो नहीं देता। बाज़ औक़ात मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि नेमत नहीं है, हमें नहीं मिली वो हमारे लिए नेमत होती है। कितनी चीज़ें खुदा खुद कहता है कि तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए खैर है, वह हुआ कुरहुल लकुम, वो तुम्हारे लिए नुकसान दे, तुम्हें फ़ायदा नहीं। खुदा अरहम रहीम, खुदा समझता है कि इस बंदे की किसके अंदर जो है वो फला है और किसके अंदर जो है उसका नुकसान होने वाला है, खुदा उसके मुताबिक अता करता है। लिहाजा मेरा मौला इन चंद जुमलों के अंदर, एक एक जुमले के अंदर जो है खुदा की नेमत को याद करता हुआ हमें ये बता रहा है कि खुदा की नेमतों को याद करो। मेरा मौला कहते हैं फ़कम या इलाही मिन क़ुरबतिन कद फ़र्रजता, कितनी ही मुश्किल थी, कितने ही मसाइब थे जिसके अंदर मैं गिरफ्तार था, खुदावंदा ने तूने उसको आसान कर दिया मेरे ऊपर। वो हमूमिन कद कशफ था, कितनी ही सख्तियाँ थी जिसमें मैं मुब्तला था, तूने इसके लिए मुझे मेरे लिए जो है वो कशफ कर दी, उसको जो है वो आसान कर दिया। वो असरतिन कद अकल था, असरा कहते हैं कि जब इंसान से एक ऐसे काम में इंसान एंटर होता है कि बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे समझे काम कर देता, बाद में उसको अफसोस होता है मैंने क्या काम अंजाम दे दिया, गलती का एहसास होता है लेकिन पछताता है वो। यहाँ पे मेरा मौला कहता है वो कम मिन असरतिन कद अकल था, जिसको तूने कलील कर दिया, तूने उसको ओवरलुक कर दिया, तूने उसको सरफे नज़र कर दिया, उससे चश्मपोशी कर दी। तू चाहता तो उस पर अजाब कर सकता था मुझे, लेकिन तूने जो है उसे चश्मपोशी की और उसको जो है वो कलील कर दिया, उसको छोटा समझ के मेरे सामने पेश किया। वो रहमतिन कद नशर था, कितनी रहमतें कितनी ही मर्सीज थी तेरी की जो मेरे ऊपर जो है वो नाजिल की। वह हलकत बलाइन कद फकक था, कितनी बार बलाओं के घेरे के अंदर मैं गिरफ्तार था, मुश्किलात के अंदर मैं गिरफ्तार था, मुझे राह हल कोई नहीं मिला था, मैं फरार का कोई रास्ता नहीं मिला था, तूने जो है वो मेरे लिए उन मुश्किलात को जो है आसान किया और मुश्किलात के इस भंवर से जो है मुझे निकाल दिया। बस अज़ीज़ा ने गिरामी, ये खुदावंद आलम की नेमतें हैं कि जो मैं और आप काउंट करें तो शायद हमारे बस की बात नहीं कि खुदा की नेमतों को जो है वो ला तहसुआ, अगर तुम काउंट करने जाओ खुदा की नेमतों को तो खुदा की ब्लेसिंग्स को, खुदा की नेमतों को जो है वो काउंट नहीं कर सकते। कोशिश करें कि जब दुआ करें, जैसे मैंने आपसे कहा था इब्तिदा के अंदर कि फ़लसफ़े दुआ फ़कत मांगना नहीं है बल्कि जो है वो मांगना उसका नतीजा होता है, इजहार अब्द है, उबूदियत है कि मैं तेरा बंदा हूँ और खुदावंद आलम के लिए ऐलान है कि तू मेरा आका और मौला है। उसकी तारीफ़ करें, अपनी पस्ती का इजहार करें, उससे हम कलाम हो, गुफ्तगू करें खुदावंद आलम से, ये जो है फ़लसफ़े दुआ है, ये हकीकत में दुआ है। और जब इंसान इस बात का इजहार करता है तो ख़ुद खुदावंद आलम की तरफ से जो है वो जिस उस बात को जानता है कि इस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसके मुताबिक जो है वो इंसान को अता करेगा। एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह अनकबूत की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे, कुछ मुतालात कर रहे थे इस मौके इस मौरद के हवाले से कि सूरह अनकबूत में खुदावंद आलम ने हमें किन किन मतालब के हवाले से तालीमात अता की हैं। ये सूरह जो है वो कुरान का हर सूरह, कुरान की हर आयत जो है वो अहम है और इंसान को जो है उस पर गौर फिक्र करने की जो है दावत दी गई है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान के हवाले से, ख़ास शब कदर के हवाले से हमें ताकीद की गई कि सूरह अनकबूत सूरह रोम की तिलावत करें। लिहाजा उन मतालिबों की जिन सूरों में जिक्र किया गया उसको समझने की कोशिश करने चाह रहे थे हम कि इस सूरह के अंदर कौन से ऐसे मतालिब हैं कि जिसकी वजह से इसको इस कदर ताकीद की गई है उस सूरह की तिलावत करने की। मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो सूरह है कि जो मक्के की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नाजिल हुआ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद।
Thank you.
इस सूरह के अंदर जब इंसानों को ये बताया कि इब्तिदा के अंदर कि तुम्हें मुश्किलात के अंदर डाला जाएगा, और फ़कत ज़बान से ये कह देना कि हम मोमिन हैं, हम ईमान नहीं करें, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जो है तुम्हें हार्डशिप्स को फ़ेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, और उन डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करने के बाद वाकई मानों में ये बताया जाएगा या इंसान को समझ में आएगा कि कौन हकीकी मानों में ईमान लाया है और कौन जो है फ़कत ज़बान ही दावे करने वाला है और हकीकी मानों में मोमिन नहीं है। इब्तिदा में इस कायदे कुल्ली को बताने के बाद और उसके बाद तीन आयतों के अंदर खुदावंद आलम ने उन चीज़ों को जो इस्तेकामत दिखाने वाले लोगों को खुदावंद आलम अता करेगा इन हार्डशिप्स के अंदर, उसको बयान किया गया। और उसके बाद तीन वो नुकात बयान किए गए कि जिसके अंदर बाज़ वो लोग जो ज़बान से ये कहते हैं कि हम मोमिन हो गए हैं, लेकिन जब इम्तिहान का मौका आता है तो वहाँ पर वो स्टेडफास्ट नहीं रह पाते, उस वहाँ पर जो इस्तेकामत नहीं दिखा पाते। पहला मरहला, इंसान के रिश्तेदार, ख़ास तौर पे जो करीब करीब रिश्तेदार जो माँ बाप की सूरत में इंसान के पास होते हैं, बाज़ वक़्त वो इंसान के राह में रुकावट होते हैं। इन आयत को पढ़ने के बाद आपको मालूम है कि माँ बाप जो है वो नज़दीक तरीन रिश्ता है जो खुदावंद आलम ने बताया अपनी उबूदियत के बाद। लिहाजा अगर माँ बाप के बारे में खुदा ये कह रहा है कि वो तुम्हें खुदा की राह में तौहीद के रास्ते में रुकावट बनते हैं, फ़लात होते हुमा, तो उनकी इताअत मत करना। लिहाजा अगर माँ बाप की इताअत करने को मना किया गया तो किसी और की इताअत बतरीके औला जो है वो मना की गई है। अगर कोई भी आपको खुदा की दीन के रास्ते से रोकता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके करीबी अफराद हो, खुदावंद आलम ने कह रहा है फ़लात होते हुमा, वहाँ पर तुम्हें खुदा के अलावा किसी और की इताअत नहीं करनी, क्योंकि वैलै या मर्जियुकुम, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर वापस आना है। ये एक नुकता। दूसरा नुकता जो है, जब इंसान मुश्किल का शिकार होता है, उज़िया फिल्लाह, जब इस मुश्किल का शिकार होता है तो उसको फेस नहीं कर पाता और इस मुश्किल से फ़रार इख्तियार करता है, इस मुश्किल से जो है वो इस्तेकामत नहीं दिखा पाता, फ़रार इख्तियार करता है। इस मौके पर आयत नंबर 10 के अंदर खुदा फरमाते हैं, वमिन नास मन यकुल आमन्ना बिल्लाह फ़ैज़ा उज़िया फिल्लाह जाला फितनतन नास का अज़ाब बिल्लाह। यहाँ पर इस फितने को जो है अज़ाब खुदा के तौर पर लेते हैं और इस रास्ते में जो है इस्तेकामत नहीं दिखा पाते। यहाँ पर खुदावंद आलम कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि कौन खुदा के राह पर चलने वाला है, कौन खुदा के राह पर चलने वाला नहीं। आखिरी नुक्ता जो कल की दर्स के अंदर हमने शुरू किया था, जिसके ऊपर बहस शुरू की थी, वो नुक्ता ये था कि एक मरतबा तीसरा मरहला ये होता है कि बाज़ औक़ात जब इंसान ईमान के रास्ते पर चलने जाता है तो अतराफ़ के लोग इंसान के ज़ख्म ज़बान, जिसे हमें कहते हैं, अतराफ़ के लोग उसको बातें करना शुरू करते हैं कि तुम कैनेडा में आके मसलन इस्लाम की तुम्हें सूझी है, तुम्हें चाहे वो कैनेडा में आके दीन पर अमल करने की बातें सूझी है, और इंसान जो है वो बहुत सारी और ज़बानी खर्च जो है वो इंसान के ऊपर किया जाता है, हमले किए जाते हैं, ज़बान के हमले किए जाते हैं, इंसान ने कहा जाता है, यहाँ पर इंसान के लिए इस्तेकामत दिखाना सख्त हो जाता है। और बाज़ अवत लोग इस तरह की बातें जो कुरान की आयत में की गई, ये कहा जाता है कि तुम ठीक है ये गुनाह कर लो, हम हैं ना, हम हैं, अगर खुदा ना खासा कयामत दिन हुआ तो हम अपने कंधों पर सारा अज़ाब जो लेंगे, तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो। बाज़ अवत इंसान के रिश्तेदार, बाज़ अवत करीबी दोस्त लोग ये कहते हैं कि ठीक है मसलन ये शादी का मौका है, बिस्मिल्लाह कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो चलता है शादी के मौके पर, ये गुनाह कर लेते हैं बाद में जो है वो देखा जाएगा, बल्कि हम हैं और अगर जो है वो कोई गुनाह होगा तो हम अपने कंधों पर ले लेंगे। यहाँ पर खुदावंद आलम सराहतन इस बात का ऐलान कर रहा है, लैसा इंसान इल्ला मा सआ, जो कोई इंसान जो कुछ करेगा उसके मुताबिक उसको जजा दी जाएगी, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स हर नफ्स जिसने जो कुछ इख्तियार किया होगा वो उसके हवाले होगा, कोई और उसके गुनाहों का बोझ उठाने वाला नहीं है। मुझे और आपको अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना है। रोज़े क़यामत के बारे में कुरान की ताबीर ये है कि ना बाप बेटे के काम आएगा, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना रिश्तेदार किसी और के काम आएगा, हर कोई फरार कर रहा होगा, हर कोई अपनी अपनी हालत को देख रहा होगा, अपनी निजात के बायस को जो है तलाश कर रहा होगा, वहाँ पर कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। लिहाजा खुदावंद आलम के वक़ाल लदीन कफ़रू लदीन आमनू, वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो मोमिनों से कहते हैं इत्तबेउ सबीलना, तुम हमारा रास्ता इख्तियार करो, तुम हमारे रास्ते पर चलना शुरू हो जाओ, हम जैसे बन जाओ, खूब हम जैसे बन जाओ। मोमिन सवाल करेगा मैं तुमसे बन जाऊंगा तो फिर मेरा आखिरत में क्या होगा, मेरे मुझ पर जो अज़ाब होगा उसका क्या होने वाला है। तो ये कहते हैं कि वल नहमिल खतायाकुम, हम तुम्हारी खताओं को अपने कंधे पे ले लेंगे, हम तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे, तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम जो है अपना काम करो, ये सारी गुनाह हमारे कंधों पर है, हम ये सारे काम जो है अंजाम देंगे। खुदावंद आलम यहाँ पर इस बात का ऐलान कर रहा है, वह मा हम बिहामदीना मिन खताया हम मिन शय, कोई एक चीज़ भी जो है वो इसकी उठा नहीं सकते, असल इनके बस में नहीं है कि काम को अंजाम दे। व इन्नहुम लकाज़िबून, ये सब के सब जो है झूठे, जो बात का इद्दा कर रहे हैं इस इद्दा के अंदर जो है ये कामिल नहीं, ये बात जो है सच नहीं कह रहे, ये असल इम्कान पजीर नहीं है, ये काम इनके बस के अंदर नहीं है कि ये काम जो है वो अंजाम दे पाए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये दो तरफ़ा जो है वो प्रोसेस है कि जो इस आयत के अंदर जो है कुरान करीम ने इरशाद किया, और सूरह आराफ़ के अंदर और सूरह अहज़ाब के अंदर बास मकामात पर इस बात को रोशन भी किया गया खुदावंद आलम ने। मैं उन आयत को बहुत तफसील से तिलावत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयत को समझने के लिए, इस आयत को समझने के लिए कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि एक तरफ ये कुफार मोमिनों को ये कहते हैं कि तुम हमारा रास्ता इख्तियार करो, हम तुम्हारा वजन उठा लेंगे, ठीक है, हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे। रोज़े कयामत जब मोमिनों को खुदा की बारगाह में पेश, मोमिनों से मुरादी वो जबानी खर्च करने वाले मोमिनों को खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा, उन पर अजाब होना शुरू होगा। ये खुदा की बारगाह में कहेंगे, परवरदिगार हमारा क्या कसूर है, ये इन लोगों ने हमें जो है गाइड किया था, ये हमारे लीडर, ये हमारे रहबर, ये हमारे प्रेसिडेंट, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये लोग हमें इस तरफ सिंध में लेके जाते, ये हमें गुनाहों की तरफ लेके जाते, हम तो अच्छे लोग थे, हम तो नेक लोग थे, हम तो पाको पाकिजा लोग थे, इन्होंने हमें जो है वो गुनाहों की तरफ लेके, ये हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे अतराफ के लोगों ने, हमारे पड़ोसी ने, ये हमें गुनाह की तरफ लेके गए, मेरे दोस्त गुनाह की तरफ लेके, मैंने तो काम अंजाम देना नहीं चाहता था। खुदावंद आलम के कुरान ने कोट किया है इन आयत को सूरह अहज़ाब के अंदर, खुदा कहता है वकालू रब्बना इन्ना अताना सादतना वकुबराना फादल्लू सबीलना, ए परवरदिगार हमने इन सरदारों से, इन सैयदों से, इन लीडर्स की पैरवी की थी, ये लोग हमें इस रास्ते पर लेके जा रहे थे, लिहाजा हमने इनको फॉलो किया, हम ऐसे बन गए। इसके बाद खुदा को क्या कहेंगे, अब इस आयत को देखिएगा, उस फिर हम जो है दोबारा से सूरह अनकबूत पे आऊँगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस आयत में खुदा कहते हैं रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब लानन कबीर, परवरदिगार इनको दो बराबर अजाब करना, हमें अजाब कर, ठीक है हमने गलती की, हमसे खता हुई, हमें अजाब करना, लेकिन इनको दो बराबर करना, क्योंकि जो इन्होंने जो है वो खुद भी गलत काम किया, हमें भी जो है वो गलत काम में की तरफ दावत दी। खुदावंद आलम सूरह आराफ में जो है उसका जवाब देता है, खुदावंद आलम कहता है कि قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, खुदा कहते हैं मैं दोनों को दो बराबर अजाब करूंगा, तुम्हें भी दो बराबर अजाब करूंगा, उनको भी दो बराबर अजाब करूंगा। अजीब व गरीब है, खुदा को आप कहेंगे भाई मुझसे तो एक खता हुई, मैं तो एक गलती की, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया था, उनको दो बराबर अजाब करो, ये मुझे क्यों दो बराबर अजाब किया जा रहा है, मेरा क्या कसूर है, मुझसे एक खता हुई। अजीज़ान गिरामी, एक प्रिंसिपल है खुदावंद आलम का, सुन्नत इलाही है खुदावंद आलम की, जब तक कोई शख्स मजलूम नहीं बनेगा, जालिम किस पर जुल्म करेगा, अगर मैं मजलूम नहीं बनूंगा तो कोई जालिम बन सकता है इस दुनिया के अंदर, मजलूम का कसूर है कि वो मजलूम बना हुआ है तब कोई शख्स जो है जुल्म करता है, अगर कोई शख्स जो है वो मजलूम बनने को तैयार ना हो इस कायनात के अंदर तो कौन है जो जुल्म करेगा, बस जालिम का कसूर ये कि जुल्म किया और किसी को मजलूम बनाया, मजलूम का कसूर ये कि वो मजलूम बना, उसने जो जुल्म को बर्दाश्त किया खुद ये वो एक जुल्म है। लिहाजा खुदावंद आलम गुमराहों के कहेगा कि तुम अगर गुमराह ना होते तो किसको जाके धोखा देते, किसको जाके जो है वो गुमराह करते। मसलन बाज़ औक़ात लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मेंबरों पे वो लोग आते हैं कि जो ऐसे मतलब बयान करते हैं वो मुनासिब नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई सुनने वाला नीचे मौजूद ना हो तो कौन है कि जो गलत मतलब बयान करेगा। रोज़े कयामत ये नहीं कहिएगा कि मेंबर से आने वाला शख्स जो है हमें गलत मतलब बयान किया जाता, खुदावंद आलम इसको दोबारा अजाब करना, ये खुद भी गलत रास्ते पर चल रहा था, हमें भी गलत रास्ते पर चला रहा था। खुदावंद आलम कहेगा ठीक है उसको तो मैं दो बराबर करूंगा, लेकिन तुम्हें भी दो बराबर करने वाला हूँ। आप कहेंगे खुदा या तू रहमान रहीम है, ये मेरा क्या कसूर था यहाँ पर। खुदावंद आलम कह रहे हैं कि इसको नीचे बैठ के सुनने वाला कौन था, इसको सपोर्ट करने वाला कौन था, ये नारे लगाने वाला यहाँ पर कौन था नीचे बैठ के, ये तुम पर भी जो है दो बराबर अजाब होने वाला है। लिहाजा एक तरफ वो लोग कि जो ये कहते हैं हम तुम्हारा बर्दाश्त कर लेंगे, खुदा ने कहा कि तुम भी गलत कह रहे हो, दीगर आया तो हमें खुदा ने जो है नीचे वाले बैठने वाले लोगों को भी मना कर दिया जो वाह वाह नारे लगाते थे। इस आयत के अंदर मैं कल एक साहब कह रहे थे कि आपकी मजालिस के अंदर नारे है, नारे वगैरह लगते हैं, तो मैंने कहा कि जो है वो अब तक हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए तो बहुत सारे नारे बना लिए, कुरान के लिए अभी तो कोई नारा बनाया नहीं है, जब वो कुरान के नारे हमारे माशरे में बन जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो नारे भी लगना शुरू हो जाएंगे। एक बार दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद इसके बाद खुदावंद आलम अगली आयत के अंदर, ये जो मैंने कहा कि ज़ैफ़ैन दो बराबर करेगा, इस आयत के अंदर यहाँ पर बताया इन लोगों के बारे में खुदा कहता है, आयत नंबर 13 के अंदर खुदावंद आलम कहते हैं वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालन मा अस्कालहिम, परवरदिगार ये कहता है कि ये लोग अपना बोझ भी उठाएंगे, कौन लोग, जो कुफार हैं और लोग मोमिन को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, ठीक है। खुदा कहता है कि यहमिलुन्ना अस्कालहुम, अपना बोझ तो उठाएंगे ये लोग, जो गुनाह इन्होंने किए वो तो उठाएंगे अपनी जगह पर, व अस्कालन मा अस्कालहिम, और उनके ऊपर एक और बोझ भी होगा। आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि परवरदिगार ने आपने कहा था अभी कि जो इंसान जैसा अमल करेगा उसके मुताबिक सजा होगी, खुदा क्यों उनको दो बराबर सजा देने वाला है। इस जो तौज़ीह मैंने आपको सूरह आराफ़ की थी उसे समझ में आ चुका होगा, एक गुनाह खुद इनके गुनाहों का उनको अजाब उठाना है जो गुमराह करते हैं, दूसरा दूसरों के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं होगा ये जो दूसरों ने गुनाह किया उसका बोझ उठाने वाले। खुदावंद आलम यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे अस्कालन मा अस्कालन का मतलब है कि दूसरों के गुनाहों का बोझ उठा लेंगे, ये लोग तो पहले से कह रहे थे वाला नाहमिलन्ना खताया, हम तुम्हारे बोझ उठा लेंगे गुनाहों का बोझ, ठीक है। खुदा आया ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैं तायद करता हूँ इन पर डबल मैं अजाब करूँगा उनके, क्योंकि ये तुम्हारे अजाबों का बोझ उठा लेंगे, नहीं खुदा ये नहीं कहना चाह रहा, खुदा कह रहे हैं इनको दो बराबर मैं अजाब करूंगा, ना ही कि तुम्हारे गुनाहों का अजाब करूंगा, एक इनके गुनाहों का अजाब करूंगा और एक गुमराह करने का अजाब करूंगा, तुम्हें अपना अजाब खुद फेस करना पड़ेगा लेकिन इनके अजाब में जो है मैं दो बराबर कर दूंगा। और खुदा कहता है वाला यस अलूना यौमल कियामत अम्मा कानू यफ्तरून, रोज़े कयामत जो है मैं इनसे सवाल करूंगा वो इफ्तरा, वो झूठ जो खुदावंद आलम पे बांधते थे, ये झूठ क्या बांधते थे, ये लोग कहते थे इन लोगों से क्या कहते थे कि हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ हम उठा लेंगे, उसने कहा मत, खुदावंद कह रहे मैं उनसे सवाल करूंगा, ये तुम बातें करते थे, ये दावे करते थे, बड़ी बड़ी जो बातें करते थे कि हम तुम्हारे अजाब का बोझ उठा लेंगे, तुम्हें ताकत कहाँ थी, तुम्हें तवानाई क्या थी, क्यों तुमने खुदावंद आलम पे इस तरह बांधा था, क्यों तुमने ये झूठ जो है वो वहाँ पर बोला था। यहाँ तक अजीज़ा ने गिरामी सूरह अनकबूत की इन 13 आयात के अंदर हमें इब्तदाई तौर पर खुदावंद आलम ने वो फ़िलासफ़ी, वो थ्योरी जो हमारे सामने पेश कर दी, लेकिन मुझ जैसे लोग शायद थ्योरी को इतना आसानी से हज़म नहीं कर पाते, लिहाजा खुदावंद आलम ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना शुरू किया मुझे और आपको। 7 अंबिया और उनकी उम्मतों का जिक्र किया गया खुदावंद आलम ने सूरह अनकबूत के अंदर, सूरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, हज़रत हूद, हज़रत साले और हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिक्र किया गया, उनकी हिस्ट्री को जिक्र किया गया और एक एक करके खुदावंद आलम मुझे और आपको बताता जा रहा है कि देखो ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हर उम्मत का इम्तिहान लिया जाएगा, आओ मैं तुम्हें तारीख से कुछ वाकयात पेश करता हूँ कि किस तरह से हमने पिछली उम्मतों का इम्तिहान लिया। और देखो खुदा ने इन आयतों में जिक्र किया, कुछ उम्मतें कामयाब हुई, कुछ उम्मतें जो है वो नाकाम हुई, कुछ उम्मतों का एक खास ग्रोह कामयाब होता है, कुछ उम्मतों का खास ग्रोह जो है वो नाकाम होता है। पहली मिसाल जो खुदावंद आलम आयत नंबर 14 से शुरू करता है सूरह अनकबूत के अंदर, वो हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री है, उनकी तारीख है। अज़ीज़ाने गिरामी शायद इंशाल्लाह अगर आपको कुरान से एक एफिनिटी, एक नज़दीकी होना शुरू हो तो आप एहसास करेंगे कुरान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के वाक़ियात भी जो मुख्तलिफ सूरों के अंदर, मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ पैचेस के अंदर खुदावंद आलम ने मुनासिबत के साथ जो है वो मुख्तलिफ वाक़ियात को जिक्र किया है। हज़रत नूह का वाकया जो यहाँ पर जिक्र किया गया है वो सिर्फ 2 आयतें, बहुत ही कुल्लियात और बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल जो है यहाँ पर जिक्र किया। अगर आप में से कोई चाहता है कि तफसील के साथ हज़रत नूह के वाकयात को तिलावत करें, उसको समझने की कोशिश करें, सूरह हूद की आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 46 के अंदर जो है खुदावंद आलम ने इन वाकयात को तफसील के साथ, थोड़ा तफसील के साथ जिक्र किया है, जो यहाँ पर जो इतना तफसील के साथ जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर फ़कत 2 आयतें, मैं इन 2 आयतों की तिलावत करता हूँ, थोड़ा सा जो इसको समझने की कोशिश करते हैं। खुदावंद आलम ये कह रहा है, एक चीज़ मद्देनज़र रखिएगा, हमारे पास जो अंबिया की फहरिस्त है, अंबिया की जो सिलसिला है, हज़रत नूह को एक ख़ास मकाम और मंजिलत हासिल है उसके अंदर। वो मकाम और मंजिलत मैं इस तफसील में इस वक्त नहीं जा रहा हूँ, कुरान की आयतों से हमारे साबित है कि पहला साहिब शरीयत नबी जो हमारे पास मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, वह हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। इससे पहले शरीयत नहीं थी, इससे पहले जो है वो उम्मतन वाहिदा की सूरत में था कुरान की ताबीर के मुताबिक। फबाथ अल्लाह नबी नमुंजरीन मुबशरीन, खुदावंद आलम ने उसके बाद अंबिया को मशहूर किया किताब के साथ ताकि जो है वो लोगों के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ है उसको हल करें। ये जो पहले नबी जो खुदा ने नाज़िल किया कुरान की आयत की रोशनी के अंदर, वो हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम थे। बस पहला नबी के जो साहिब शरीयत था, बच्चों को हम लोग दुनिया की किताबों में याद कराते हैं उलुल अज़्म नबी अंबिया के नाम, उसमें पहले नबी का जो नाम है हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम है। बस पहले नबी जो हज़रत नूह थे जिनके ऊपर जो है वो शरीयत नाज़िल हुई। आयत नंबर 14 के अंदर खुदावंद आलम इस तरह से फरमाता है, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ میں دوسری آیت نمبر 15 بھی جو سورہ حضرت نوح کے حساب سے وہ بھی تلاوت کر لیتا ہوں، فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ان دو آیتوں کا بیسک ترجمہ اس طرح سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، لَبِثَ کا مطلب ہے کہ مقص، یعنی اسٹے کیا، انہوں نے رکے اپنی قوم کے درمیان کتنے سال، الف سنہ، الف انشاءاللہ آپ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں ایسا ایسا جو ہے اپنی عربی کی وکیبلری بھی جو ہے انکریز کرنا شروع کر، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آنا شروع ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، الف کا مطلب ہے 1000۔ اوکے، قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نو علیہ نبینا علیہ السلام 1000 سال، الفا سنک، سنا جو ایئر کو کہتے ہیں، 1000 سال اپنی قوم کے درمیان رہے، الا ایگزمشن ہے، استثناء ہے، مائنس کیا جا رہا ہے، کس کو، 50 عاماً، 50 کہتے ہیں 50 کو، 5 کو کہتے ہیں 50 عاماً، عام بھی دوبارہ سے جو ہے وہ ایئر کے لیے ایک دوسرا ورڈ ہے۔ بس خداوند عالم کہہ رہا ہے 1000 - 50۔ ایک سوال ہے، میں بہت سارے شاید جو ہے وہ قرآن کی دقتوں کو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتا، کیوں خداوند عالم نے ڈائریکٹ سے نہیں کہا کہ 950 - 50، خدا کہہ سکتا تھا کہ حضرت نوح جو ہے وہ اپنی قوم کے درمیان جو ہے وہ 950 عاماً جو ہے وہ رکے تھے، خدا نے نہیں کہا، خدا نے کہا الفا میا و الا 50 عاماً، خدا نے جو ہے وہ پلس اور مائنس کر گیا۔ شاید جو بیسک میتھمیٹکس ہمیں سکھانا چاہ رہا تھا خداوند عالم، کہ تمہیں جو بیسک میتھمیٹکس آ جائے کہ تم جو ہے وہ کس طرح سے اس کاؤنٹ کو کاؤنٹ کرتے ہو۔ मैं इस तफसील को स्किप करते हुए, खुदा ने यहाँ पर लिखा कि 950 ईयर्स हज़रत मूसा अला नबी वसलम ने अपनी कौम के दरमियान गुजारे। इसके बाद हुआ क्या, सूरह हूद की आयत के अंदर आपको तफसील मिलेगी कि कौम ने क्या किया हज़रत नूह के साथ, हज़रत नूह ने इनके क्या किस तरह जवाब दिए, सारा सिलसिला होता है। खुदावंद आलम ये कहता है फ़ाखर रहम तूफ़ान, जब कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मौके पर आके मायूस हो जाते हैं, कौम के लिए बद्दुआ करते हैं, यहाँ पर खुदावंद आलम कहता है फ़ाखर रहम तूफ़ान, तूफ़ान जो है उनको घेर लेते हैं। तूफ़ान जिस तरह से हम तकरीबन उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तकरीबन उसी माना के अंदर है, इसकी तफसील में जाए बगैर वह हम ज़ालिमून, इस हालत के अंदर वो लोग ज़ालिम थे, खुदा के मुनकर थे, खुदा का इनकार कर रहे थे, खुदा के नबी की, खुदा के वली की जो है मुखालफत कर रहे थे। जब ये तूफ़ान आता है, इस तूफ़ान जो है इस कौम को घेर लेता है, यहाँ पर खुदावंद आलम, मैंने कहा कि ये इम्तिहानात का सिलसिला है कि जिसकी जिस थ्योरी को प्रैक्टिकल यहाँ पे खुदावंद आलम मुझे और आपको बताया कि जब फितनों में मुब्तला होती है कौम, आजमाइश में मुब्तला होती है कौम, तो एक कौम का मोमिन जो होते हैं वो ये होते हैं कि हक के रास्ते पर इस्तिकामत नहीं दिखा पाते, एक बड़ी तादाद जो है वो हक के रास्ते से हट जाती है, एक ख़ास ग्रोह होता है कि जो इस्तिकामत दिखाता है। यहाँ पर खुदावंद आलम कहते हैं फ़ानजई ना हो व असहाब सफ़ीना, परवरदिगार ये कहते हैं कि हमें ये बता रहे कि हमने निजात दी किसको, हज़रत नूह अला नबीना वालेसलाम को व असहाब सफ़ीना, हज़रत मु सफ़ीना कहते हैं किश्ती को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती, आप सबको ये वाकया मशहूर वाकया जो है हम सब ने सुना हुआ है, वो किश्ती बनाई थी, उसके असहाब जो थे उसके अंदर जो आ चुके थे, खुदावंद आलम ने जो है उन लोगों को निजात दी थी, बाकी सारे लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो गर्क हो गए। बस इस मैं आयत का अगला हिस्सा पढ़ूँ, फ़ाखर ना हूँ तूफ़ान फ़नजे ना हूँ असाब सफ़ीना व जाल ना हूँ फ़ाजाल ना आयतन लालमिन, हमने जो इस वाक़े को जाल ना, ये जो प्रोनाउन है वो इसका किसकी तरफ जा रहा है, हमने इस वाक़े को हज़रत नूह के वाक़े को जो है वो आयत बना लिया, निशानी बना लिया, साइन बना लिया, किसके लिए, लालमिन तमाम लोगों के लिए, तमाम फ़िक्र करने वालों के लिए, इस कायनात की जितनी भी मखलूक़ात है खुदावंद आलम ने उसके लिए जो आयत बनाया। हज़रत नूह के वाक़ियात के लिए फ़कत खुदावंद आलम यह नज़रिया यूज़ किया, हज़रत ईसा अला नबी वसलम के लिए दो मरतबा ये वाक़ियात ये आयत यूज़ की गई, हमने आयत बनाया है आलमीन के लिए। बस हज़रत नूह का वाक़िया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, और शायद यही वजह है मैंने कहा कि कुरान के अंदर जो आयतन लिल आलमीन फ़कत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत ईसा के लिए यूज़ किया गया ये कलमात, शायद यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक इमाम अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मिसाल दी इस उम्मत के लिए, तो क्या कहा था, बाज़ रिवायत के मुताबिक मेरे मौला को खिताब करके कहा, बाज़ रिवायत के मुताबिक जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को खिताब करके कहा, खिसाल के अंदर शेख सदूक ने जो रिवायत नकल की उसके अंदर मेरे मौला को खिताब करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये जुमला निकला, बहुत खूबसूरत जुमला है, और ये जुमला ऐसा है कि जो इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए, कुरान पर गौर करे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कलमात के ऊपर गौर करे। मेरा मौला क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, या अली मसलु कफी उम्मती का मसल सफीनतिन नूह, ए अली आपकी मिसाल इस उम्मत के दरमियान ऐसी है जैसे इस उम्मत हज़रत नूह की उम्मत के दरमियान उस सफ़ीने उस किश्ती की मिसाल थी। खूब, उस किश्ती में क्या हुआ था आपको मालूम है, वाक़ सूरह हूद का पढ़िएगा वाक़, बहुत लतीफ़ वाक़ है, जब हज़रत नूह के बेटे इसको ने हज़रत नूह ने अपने बेटे को कहा कि बेटा किश्ती में आ जाओ, तो बेटे ने क्या कहा, बाबा मैं पहाड़ के साए में हूँ, पहाड़ बहुत ऊँचा है, बहुत बुलंद है, बहुत कभी है, मुझे निजात दे देगा, ला आसिम अल यौम, हज़रत मूसा ने क्या जवाब दिया, आज के दिन कोई निजात नहीं है, अगर निजात का रास्ता है तो फ़कत ये किश्ती है, अगर इस किश्ती में सवार हो जाओगे तो निजात पा जाओगे, अगर किश्ती में सवार नहीं होंगे तो हलाक हो जाओगे, लिहाजा मेरा मौला फरमाते मन नाक़िबहा नजा, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा जाएगा, वो मन तखल्लफ आनहा गरक, और जो इससे तखल्लफ हो गया, जिसने उससे हट गया, जो किश्ती में सवार नहीं हुआ, सब के सब हलाक हो जाएंगे। हज़रत नूह के वाक़े में यही हुआ था, हज़रत नूह का बेटा भी, लिहाजा खुदा ने कहा कि लैसा मिन अहली, ये तेरा अहल नहीं है, अहल का मतलब ये नहीं है कि मैं सैयद हूँ, मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने हूँ, इसको अहलियत नहीं कहते, अहलियत इसको कहते हैं कि जब अहले बैत की सीरत पे मैं और आप अमल करना शुरू करते हैं उसको कहते हैं कि अहल है। लिहाजा हज़रत मूसा के लिए भी खुदा ने कहा कि तेरा बेटा है, आपका बेटा है, लेकिन क्योंकि आपकी इस सुन्नत पर आपके रास्ते पर नहीं चल रहा, लैसा मिन अहली, लिहाजा वो आपके अहल में से नहीं है। लिहाजा यहाँ पर खुदा वंदारा ने शायद ने कहा कि असहाब उस सफ़ीना जो है फ़कत निजात पाएंगे, इस कुरान की आयत ने क्या कहा, खुदा ने ये नहीं कहा कि वो लोग कि जो किसी तरह से किसी से रिलेटेड थे वो निजात पाएंगे, नहीं, असहाब उस सफ़ीना, सहाबी उसको कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो किसी और चीज़ से। अज़ीज़ाने गिरामी, बाज़ औक़ात मुझसे और आपसे जो गलती होती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के मामले के अंदर वो ये होती है कि किश्ती के अंदर मुझे और आपको सवार होना है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं और आप खुदा ना खासा मुझ जैसे लोग क्या करें, मुझ जैसे लोग ये कह रहे हैं कि दरिया के किनारे खड़े हुए हैं, सामने जो एक बहुत खूबसूरत किश्ती हो, मैं और आप यहाँ से बैठ के कसीदे पढ़ना शुरू कर दें, वाह वाह सुभान अल्लाह क्या किश्ती है, कसीदे पढ़ रहा हूँ मैं, तारीफ़ें कर रहा हूँ उस किश्ती की, खुदा क्या खूबसूरत किश्ती बनाई है, इसकी जो है वो लकड़ी जो है वो किस कदर खूबसूरत है, इसके अंदर जो है वो किस कदर जो है उसका बादबान किस कदर खूबसूरत है, इसके अंदर जो है वो किश्ती चलाने वाला किस कदर खूबसूरत है, मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ यहाँ पर जो है बैठ के,
अगर तूफान आना शुरू हो, ये किनार पे बैठ के जो तारीफें कर रहा है किश्ती की, उसको आपके ख्याल में निजात मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है? क्या कहते हैं आप, निजात मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है? आप कहेंगे माशाल्लाह इतने कसीदे पढ़ा यहाँ बैठ के, किश्ती के कसीदे पढ़ा है, इसको निजात मिलनी चाहिए। किश्ती ने कहा क्या कहा था, मन रकब नजा, जो इस पर सवार हो जाएगा उसको निजात मिलेगी। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे और आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ सवार होना है, उनके रास्ते पर चलना है, कदम ब कदम अली अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलेंगे तो मुझे और आपको निजात मिलने वाली है। वरना इस कायनात के अंदर मेरी आपकी निजात का कोई रास्ता नहीं है। इस कायनात के अंदर निजात का जो रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकलैन की सूरत में मुझे और आपको बताया, वो फ़कत फ़कत कुरान और अहले बैत है। आइए कुरान और अहले बैत की किश्ती में सवार हो जाएं, दूर से बैठ के नज़ारा नहीं करें। ये बहुत खूबसूरत किश्ती है, ये इस तूफ़ान के अंदर जो आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तूफ़ान के अंदर मैं और आप गर्क हो रहे हैं, उससे निजात के लिए एक ही किश्ती हमारे पास मौजूद है, एक ही सफ़ीना हमारे पास मौजूद है, और अहले बैत के और कुरान के अलावा मेरे पास आपके पास कोई सफ़ीना मौजूद नहीं है। आइए इस किश्ती में सवार हो जाएं, जब इंशाल्लाह हम इस किश्ती में हकीकी मानों में सवार हो जाएंगे, मैं और आप निजात पा जाएंगे, फिर हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ना किसी तूफ़ान का मुझे और आपको खौफ होना चाहिए, ना किसी बुराइयों का आपको मुझे खौफ होना चाहिए, ना किसी कल्चरल अटैक का मुझे और आपको खौफ होना चाहिए, क्योंकि मैं और आप अहले बैत की किश्ती में जो है सवार हो चुके हैं। मैं और आप अहले बैत जैसे बन चुके हैं, हमने अहले बैत की सीरत में अपने आप को ढाल लिया है, हमने कदम ब कदम अहले बैत जैसा बनना शुरू कर दिया। बस जो लोग सफीने के अंदर सवार होंगे वो निजात पा जाएंगे। इस हदीस के अंदर जो है, इस आयत के अंदर सूरह अनकबूत की खुदावंद आलम ने इन दो आयतों के अंदर हमें यह बताया कि हज़रत नूह की उम्मत का इम्तिहान हुआ, उम्मत उस इम्तिहान में नाकाम होती है, फ़कत एक मखसूस गुरोह होता है कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का साथ देता है और खुदावंद आलम उनको निजात देता है। और इस काम को खुदावंद आलम ने कहा कि मैंने जो है साइन बना दिया आलमीन के लिए, तमाम लोगों के लिए जो है वो एक निशानी और एक साइन के तौर पर पेश किया। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को जो शुरू करते हैं, तकरीबन आयत नंबर 24 तक हज़रत इब्राहिम के हवाले से कुछ आयत की हम लोग तिलावत करने की कोशिश करेंगे। आज वक्त कम है और कल के टाइम को जो है मैं, जो लोग नए हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन कल मैंने मुझसे एक गलती सरज़द हो गई थी डॉक्टर रिजवान के हक़ में, उनकी तकरीर आप सुन नहीं सके थे, इंशाल्लाह जो है आज हम उनके मतालिब से इस्तेफादा करेंगे। लेकिन जो है वो खुलासा मैं आपको ये बता रहा हूँ, नूह के वाक़ियात हमने पढ़ा, अब इंशाल्लाह छः और उम्मतों के वाक़ियात हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसके बाद सबसे पहले जो हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा, उनके हवाले से जो कुछ वाक़ियात को बयान किया जाएगा। इस आयत जो हम हज़रत इब्राहिम के हवाले से पढ़ेंगे कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी जो तौहीदी मदालिब है उसके अंदर, थोड़ी सी अकायद के मसाइल में, शायद मैं थोड़ा सा फास्ट इससे गुजरूँगा ताकि आपकी रोज़े के उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में क्रिएट ना करूँ। लेकिन ये कि अगर मौका मिले, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से कि सूरह अनकबूत की तिलावत करें रोज़ाना, जो है वो कम से कम 5-10 आयत अगर जो आगे हम लोग पढ़ने वाले, अगर आप पढ़ के आएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत से जो है इस्तेफादा कर सकेंगे। इस दुआ के साथ खुदावंद अल्लाह हम सबको कुरान को पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा नव्विर बुयूतना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा ज़य्यन अख़लाक़ना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा अग़फिर अरवाहना बिल कुरान, اللهم احفظ قائدنا بالقران اللهم فرج لولينا بالقران درود بچ محمد والے محمد کا